नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य सरकार ने कहा, हड़ताल पर चल रहे राजस्व सेवा के अधिकारियों की जगह सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों और कानूनगो को भी अंचलों का प्रभार सौंपा जाएगा। केंद्र सरकार ने दरभंगा एम्स निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश। मौसम विभाग ने आज भी कई स्थानों पर धूल भरी आंधी और बारिश का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच सरकार की प्राथमिकता नागरिक हितों की रक्षा है। श्री मोदी ने यह बात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। ब्यौरा हमारे संवाददाता कनक लता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और नागरिकों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। श्री मोदी ने राज्यों से अपील की कि वे आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करें और जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। श्री मोदी ने राज्यों से सौर ऊर्जा, जैव ईंधन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की गति तेज करने का आग्रह किया और पाइप वाली प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने को भी कहा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद भारत में दैनिक जीवन पर कोई असर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि देश ने इस संकट का प्रभावी ढंग से सामना किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगभग शून्य प्रभाव के साथ स्थिर आपूर्ति बनाए रखी है।
प्रधानमंत्री जी ने रामनवमी के दिन देश की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया। पेट्रोलियम कंपनियों का घाटा बढ़ता जाता था, ऐसी स्थिति ना आ जाए कि उनको दाम बढ़ाने पड़े, इसलिए सरकार ने अपने राजस्व में कटौती कर एक्साइज ड्यूटी को कम करने का काम, और शायद ही कोई दुनिया में देश ऐसा हो जिसने पूरे संकट का बोझ अपने पर लिया है। पूरे देश में रोजमर्रा की गतिविधियों में कहीं कोई कटौती करे बगैर हमें वैश्विक संकट के पार निकलने का प्रयास करें।
उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि हड़ताल पर चल रहे राजस्व सेवा के अधिकारियों की जगह सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों और कानूनगों को भी अंचलों का प्रभार सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पत्र जारी कर दिया है। 1 अप्रैल से नई व्यवस्था प्रभावी होगी। केंद्र सरकार ने दरभंगा एम्स निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। 25 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में पूर्व में स्वीकृत 1264 करोड़ रुपए के अतिरिक्त 700 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से दरभंगा एम्स के निर्माण को गति मिलेगी। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अब रात्रि में भी विमान परिचालन सेवा की शुरुआत होगी। ग्रीष्मकालीन समय सारणी के अनुसार एक निजी कंपनी का विमान पुणे से आज रात 2 बजे पटना पहुंचेगा और आज ही रात 2:55 पर पुणे के लिए उड़ान भरेगा। गौरतलब है कि 4 वर्ष के बाद रात्रि में पटना से विमान सेवा की शुरुआत हो रही है। दरभंगा हवाई अड्डे ने यात्रियों की संख्या के मामले में 57% की बढ़ोतरी दर्ज की है। ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के फरवरी महीने तक हवाई अड्डे से 7,11,000 यात्रियों ने आवागमन किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह संख्या 4.5 लाख से अधिक थी। यात्रियों की संख्या के मामले में दरभंगा हवाई अड्डे ने पटना और गया हवाई अड्डे को काफी पीछे छोड़ दिया है। राज्य सरकार बांस के उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए मधेपुरा में बांस का क्लस्टर स्थापित करेगी। उद्योग विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। मधेपुरा के बाद इस मॉडल का प्रयोग ऐसे अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा जहां बांस का व्यापक उत्पादन होता है। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार परिचारिका संवर्ग के 2190 स्टाफ नर्स का तबादला कर दिया है। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि स्थानांतरित स्टाफ नर्सों को अप्रैल महीने का वेतन नए पदस्थापित स्थल से ही मिलेगा। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पिछले साल हुए हिंसक जेएनसी प्रदर्शनों में कथित संलिप्तता के आरोप में आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी बालेंद्र शाह के देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद हुई है। पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी ओली के साथ हिरासत में लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इस दौरान कई जगहों पर ओलावृष्टि और वज्रपात की भी खबर है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि तेज हवा के कारण जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। कई जगहों पर रेल परिचालन बाधित होने के भी समाचार हैं। इधर आंधी बारिश के कारण फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। आम और लीची की फसल की भी क्षति हुई है। हमारे पटना संवाददाता ने बताया कि 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के कारण कई स्थानों पर घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रही।
पटना में देर रात तेज आंधी से राजापुर पुल, कंकड़बाग, दानापुर, पोलो रोड और रूपसपुर समेत अन्य इलाके में पेड़ टूटकर गिर गए। इससे आवागमन बाधित हो गया। कंकड़बाग, बोरिंग रोड, डाक बंगला, आयकर गोलंबर, आशियाना और दानापुर सहित कई इलाकों में तेज आंधी के कारण विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई। हालांकि कुछ घंटों में विद्युत व्यवस्था को बहाल कर दिया गया। आंधी बारिश के कारण फसलों को भी काफी क्षति हुई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारी।
इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज भी राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। अररिया, बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने, ओलावृष्टि और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही जमुई, खगड़िया, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा समेत राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में भी धूल भरी आंधी चलने और वज्रपात का अलर्ट है।
दिनांक 28 मार्च 2026 को राज्य के अररिया, बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं सुपौल जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात तथा ओलावृष्टि के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों जमुई, खगड़िया, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया एवं सहरसा जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई की दिल्ली टीम करेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी ने भ्रष्टाचार निरोधक इकाई दिल्ली के पुलिस अधीक्षक को जांच की निगरानी का जिम्मा सौंपा है। मधुबनी के जयनगर में विद्युत विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक की नेपाल स्थित संपत्तियों की जांच होगी। आर्थिक अपराध इकाई ने इसके लिए इंटरपोल डेस्क से मदद मांगी है। पिछले सप्ताह ईओयू की छापेमारी में मनोज कुमार रजक के पास लगभग 1.5 दर्जन अचल संपत्तियों की जानकारी मिली थी। इनमें नेपाल के काठमांडू और सुनसरी में भी अचल संपत्तियों का पता चला था। पटना के आलमगंज और रामकृष्णनगर थाना क्षेत्र से पुलिस और जिला आसूचना इकाई की टीम ने करोड़ों रुपए मूल्य के मादक पदार्थ और नशीले इंजेक्शन की खेप के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। गया एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क विभाग और सीआईएसएफ की टीम ने एक व्यक्ति को 5 किलो विदेशी गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला है। वह थाई विमान से गया एयरपोर्ट पहुंचा था। सारण जिले के माझी प्रखंड के मटियार गांव में सरयू नदी के कछार में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं वैशाली जिले के गनियारी गांव और राघोपुर पश्चिमी पंचायत में डूबने से 3 लड़कियों की मौत हो गई। आईपीएल क्रिकेट का 19वां सत्र आज से बेंगलुरु में शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से एन चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होगा। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। 2 महीने चलने वाला यह टूर्नामेंट 31 मई तक चलेगा। रांची के खेलगांव में आयोजित 28वीं सब जूनियर नेशनल सेपक टाकरा प्रतियोगिता के अंतिम दिन बालिका वर्ग में बिहार की टीम ने क्वाड इवेंट में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। खगड़िया के नौगछिया के रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित 4थी बिहार राज्य गोल्ड कप बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में बेगूसराय, सीवान, मधेपुरा और मेजबान नौगछिया की टीमों ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्रियों से वार्ता में प्रधानमंत्री ने नागरिक हितों को बताया सर्वोपरि। कहा, देश में नहीं लगेगा लॉकडाउन, टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें राज्य। हिंदुस्तान ने लिखा है, पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा नहीं होगा, केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 10-10 रूपये उत्पाद शुल्क घटाया। दैनिक जागरण लिखता है, नीतीश कुमार 30 को देंगे विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आज दे सकते हैं विधानसभा से त्याग पत्र। दैनिक भास्कर ने लिखा है, डेंगू निमोनिया के लिए 3 नए टीकों को मंजूरी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, पीएनजी यूजर्स घर बैठे सरेंडर कर सकेंगे एलपीजी कनेक्शन। आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने रामनवमी से जुड़ी खबरों को सचित्र प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य सरकार ने कहा, हड़ताल पर चल रहे राजस्व सेवा के अधिकारियों की जगह सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों और कानूनकों को भी अंचलों का प्रभार सौंपा जाएगा। केंद्र सरकार ने दरभंगा एम्स निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश। मौसम विभाग ने आज भी कई स्थानों पर धूल भरी आंधी और बारिश का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।